दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज सोमवार है और आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस्मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज मंगल है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमा सहे और रोशन राहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो चलिए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14:13-21 आयत तक। उस वक्त यीशु योहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वहरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सिर हो गए और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5,000 मर्द थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हेरोदेस ने गलती से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु समझ लिया। यीशु हेरोदेस के वहशीपन को जानता था, इसलिए वो गलील को चला गया। वो तन्हा रहना चाहता था, लेकिन जल्द ही लोगों की भीड़ उसके गिर्द जमा हो गई। उसने बीमारों को शिफा बख्शी और उन्हें निजात की खुशखबरी सुनाई। लोगों को वापस भेजने से पहले उसने उन्हें खाना खिलाया। उसने न सिर्फ उनकी रूहों की फिक्र की बल्कि उनके बदनों की भी फिक्र की। गौर करें कि किस तरह शागिर्दों ने अपने उस्ताद के साथ मिलकर काम किया और किस तरह बचे हुए टुकड़ों की हिफाजत की गई। सिर्फ यही एक ऐसा मौजज़ा है जो कि चारों अनाजील में दर्ज है। यूहन्ना की अंजील में इस मौजज़े के फौरन बाद जिंदगी की रोटी का पैगाम आता है और उसमें इस मौजज़े के मायने बयान किए गए हैं। यीशु जिंदगी की रोटी है। वो न सिर्फ जिंदगी को कायम रखने वाला है बल्कि अपनी जिंदगी को देने वाला भी है। ये जरूरी है कि हम हर रोज मसीह के जिंदा कलाम को ईमान के वसीले से अपने दिलों में जगा दें ताकि हमारी रूहों को ताजगी मिलती रहे। आमीन।
मन्नण के डर करे रब खाजा खादे उसे अपना रहम बखावे बरकत देवे चेहरा अपना सादे ते चमकावे रब खाजा खादे उसे अपना पुछाणी जावे रब अखादा सादे उसे अपना रहम बखावे बरकत देवे चेहरा अपना सादे ते समकावे
अम दोस्ती के पैगंबर के अजीज दोस्तों, इस रोशन सुबह में प्रोग्राम रोशन राह लिए हम हैं आपके मेजबान सारा जॉन और फ्रांसिस सेवियर। प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए।
कहिए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे होंगे। जी हाँ, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि साथियों कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इसमें कि दूसरे आपकी जिंदगी से कितने खुश हैं। इसलिए आज से अपनी जिंदगी इस तरह गुजारिए कि दूसरे आपके हर अमल से खुश हों और किसी तरह भी उन्हें आपसे कोई दुख न पहुंचे।
और फिर ये कि आप अपनी जिंदगी खुद संवार सकते हैं, इसे संवारने में आपका अपना हाथ है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपकी अच्छी जिंदगी का दारोमदार आपके अमाल पे है, इसलिए जरूरी है कि इकतार की रोशनी में जिंदगी बसर की जाए, इकतार को अपनी जिंदगियों में जगह दी जाए।
साथियों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अमाल और किरदार का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं, कोई दूसरा हम पे कोई इख्तियार नहीं रखता। हम चाहे तो अपनी मर्जी से, बल्कि आजाद मर्जी से अपनी तकदीर भी खुद बदल सकते हैं। दूसरे हमें मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन इस पे अमल करना या ना करना हम पे मुनहसर है। इसलिए अकदार में जिंदगी बसर करके
اپنے آپ کو نظم و ضبط میں رکھیے۔
ساتھیوں، انسان اپنی زندگی خود بناتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں ایک خوبصورت سی کہانی جو تین مچھلیوں کے بارے میں ہے، یعنی خشک مچھلی، دھوئیں دار مچھلی اور ایسی مچھلی جو سمندری مچھلی کہلاتی ہے۔
جی ساتھیوں، تو ایک بلند بالا عمارت زیر تعمیر تھی، اس پہ تین ممالک کام کر رہے تھے کہ دوپہر کے کھانے کی گھنٹی بج گئی۔ تینوں ممالک اسی چھت پہ بیٹھ کے جس پہ وہ کام کر رہے تھے اور اپنے اپنے لنچ باکس کھولے تاکہ کھانا کھا سکیں۔ پہلے نے اپنا لنچ باکس کھولتے ہوئے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، خشک مچھلی، کوئی بھی ایسا دن نہیں جب دوپہر کے کھانے میں خشک مچھلی نہ کھاؤں۔ اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے بولا، میری بات یاد رکھو، اگر کل بھی مجھے یہ مچھلی ملی تو میں اپنے آپ کو اس عمارت سے گرا لوں گا۔
دوست، ایک دوسرا شخص اپنا لنچ باکس کھولتا ہے اور ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، دھوئیں دار مچھلی۔ اس نے کہا، ہر روز مجھے یہی مچھلی ملتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے اعلان کیا، میرا یقین کرو، اگر کل بھی مجھے یہی مچھلی کھانے کو ملے تو میں اس عمارت سے چھلانگ لگا کر مر جاؤں گا۔ دوست، اب تیسرے شخص کی باری تھی۔ جو ہی اس نے اپنا لنچ باکس کھولا تو وہ مایوس ہو گیا، مجھے ہمیشہ سمندری مچھلی ہی کھانے میں ملتی ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اگر کل بھی یہی کچھ ہوا تو میں اس عمارت سے اپنے آپ کو گرا دوں گا۔
ساتھیو، اگلے روز دوپہر کے کھانے کی گھنٹی بجتی ہے، تینوں ممار پھر اسی منزل پہ بیٹھے ہیں۔ پہلا شخص اپنا لنچ باکس کھولتے ہوئے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، خشک مچھلی۔ اس کے بعد وہ چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ دوسرا شخص اپنا لنچ باکس کھول کے اونچی آواز میں واویلا کرتا ہے، پھر سے دھوئیں دار مچھلی، وہ بھی اسے مارے سے کود پڑا اور مر گیا۔ تیسرا شخص اپنا لنچ باکس کھولتے ہوئے چلاتے ہوئے روتا ہے، سمندری مچھلی، اور وہ بھی اسے مارے سے چھلانگ لگاتے ہوئے نیچے آ کے مر جاتا ہے۔
دوست، تینوں آدمیوں کے جنازے پر ان تینوں کی بیویاں گلے مل کر روتی ہیں۔ پہلی روتے ہوئے کہتی ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے خاوند کو اب خشک مچھلی پسند نہ تھی، اس نے اس کا ذکر مجھ سے کیوں نہ کیا، اگر اس نے مجھ سے کہہ دیا ہوتا تو میں اس کے لیے کچھ اور تیار کر دیتی۔ دوسری بیوی روتے ہوئے کہتی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں دھوئیں دار مچھلی کے بجائے کچھ اور پکا کر دیتی۔ تیسری بیوی ان کے درمیان بولتی ہے، نہ جانے میرے خاوند نے اپنے آپ کو کیوں مار ڈالا۔ دوسری دو نے تجسس بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے جواب میں کہا، کیونکہ میرا خاوند تو ہر روز اپنا دوپہر کا کھانا خود تیار کرتا تھا۔
ساتھیو، یہ تھا واقعہ تین مچھلیوں کا، جس میں بہت ہی اہم سچائی پائی جاتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنا دوپہر کا کھانا خود تیار کرتا ہے۔ ساتھیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہمیں اپنی نوکری پسند نہیں، اگر ہمیں اپنے تعلقات پسند نہیں، اگر ہم اپنی روحانی زندگی سے مطمئن نہیں، تو ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ ہم خود قصوروار ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، اس نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اپنا کھانا خود تیار کریں، یعنی ہم اپنی قسمت خود بدلیں۔ ساتھیو، اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں، قرض سے رہائی چاہتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں اور اپنی بری ادا سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی میں زیادہ خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، تو اپنے کچن کی جانب جائیے، یعنی اپنے اندر جھانکیے اور خود سے سوچیے، اپنا کھانا خود تیار کیجیے، کیونکہ آپ اپنا مستقبل خود ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اپنی منزل خود بناتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے، آپ کس قسم کا مستقبل چاہتے ہیں، کس قسم کی زندگی پسند کرتے ہیں، کس قسم کی آخرت چاہتے ہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔
جی دوستو، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو اقدار کا سہارا لینا ہوگا۔ اقدار ہماری آخرت بھی سنواریں گی اور ہمیں بہتر مستقبل بھی دیں گی، ہمارے باطن اور ظاہر میں بھی نکھار پیدا کریں گی۔
سامعین، ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ پروگرام سن رہے ہیں روشن راہیں۔
साथियों, हमने आपको इकतार की अहमियत के हवाले से तीन मछलियों की कहानी सुनाई और के ममारों ने किस तरह अपनी जानें गवाई, क्योंकि वो ये ना जानते थे कि वो अपना मुस्तकबिल खुद बना सकते हैं। अच्छी या बुरी इकतार का इंतखाब हमारे अपने हाथ में है।
साथियों, हर इंसान को प्यार की जरूरत होती है और हमारा फर्ज भी है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। प्यार सिर्फ बड़े बड़े मार्कों या चीजों ही से जाहिर नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी छोटी छोटी चीजों या तरीकों से जिनसे हम प्यार का इजहार कर सकते हैं, जो हमारी नजर में शायद बेमानी हो। जैसे एक खामद अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, एक दिन उसने सोचा कि वो ये साबित करके दिखाएगा कि वो इससे किस कदर प्यार या मोहब्बत करता है।
दोस्त, इसके लिए उसने एक बहुत बड़े समंदर को तैर के पार किया, गहरे दरिया को पार किया और बुलंद वाला पहाड़ भी सर किए, ताकि उससे अपनी अकीदत का इजहार कर सके। लेकिन आखिर में क्या हुआ, बीवी ने उसे तलाक दे दी। भला क्यों? क्योंकि वो कभी भी घर पे ना था।
साथियों, अज़दवाजी जिंदगी में प्यार की वक़्त इसी में है कि घर पे भी वक्त दिया जाए। कामयाब घराने वही होते हैं जब काम और घर के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जाए, जब आप एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक नहीं होते, एक दूसरे के पास बैठ के वक्त नहीं गुजारते, एक दूसरे की नहीं सुनते, तो फिर बड़ी बड़ी कुर्बानियों और मार्कों का क्या फायदा।
दोस्त, यही वो वजूहात हैं जिनके बिना पर घराने टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
साथियों, एक शख्स अपने बचपन का तजुर्बा बयान करता है। कहता है, मैंने अपनी माँ से पूछा कि मेरी जुराबें क्यों हमेशा मेरे बूटों में गिरती रहती हैं। लड़कपन में मैं हमेशा इस बात पर सोचता रहता, जबकि मेरी जमात के दूसरे लड़कों का मसला ना था, उनकी जुराबें सारा दिन उनकी टांगों पे कायम रहतीं।
दोस्त, वो शख्स कहता है, माँ ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, लेकिन बगैर कुछ कहे मुझे दो रबड़ बैंड्स दिए, जो मैं बकायदगी से अपनी जुराबों के ऊपर चढ़ा लेता। उस शख्स का कहना है, उस दिन से लेकर 15 साल बाद तक अब भी मेरी टांगों पर रबर बैंड्स के निशानात हैं। इन निशानात के बावजूद ये दो रबर बैंड्स मेरे बहुत काम आए और उन्होंने मेरा साथ दिया।
साथियों, उस शख्स का कहना है कि मेरे वालिदैन के पास पैसे नहीं थे कि मेरे लिए नई जुराबें खरीद सकते, इसलिए मैंने 5 साल तक वही जुराबें पहनी। ये पुराने और बुसीदा हो चुके थे, रंग भी उड़ चुका था और इलास्टिक भी ढीली हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी शिकायत ना की। वो इसलिए चूंकि मेरे वालिद हमेशा घर पे थे, जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, हर शाम जब वो काम से फारिग होकर घर लौटते, हम इकट्ठे वर्जिश करते, बैठते, गप्पे हांकते, हफ्ते के अखीर पे बाहर घूमने जाते, कुछ खाते और घर आने से पहले नए रबर बैंड्स खरीदते।
दोस्तों, शख्स कहता है, मैंने इससे ये सबक सीखा है कि हकीकत में हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे अपने प्यार के इजहार के लिए हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दें। दरिया पार करना, पहाड़ों को सर करना, दिल की गहराइयों में हमारी उनसे यही तवक्को है कि वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ वक्त गुजारें।
साथियों, खुदावंद भी हमसे प्यार करता है, लेकिन बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि वो हमसे दूर है, हमारी दुआएं नहीं सुनता, हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये मत भूलिए कि उसकी राहें और ख्यालात हमारी राहों और हमारे ख्यालात से फर्क हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो अचानक हमारी दुआएं नहीं सुनता, हमारी जरूरियात पूरी नहीं करता, बीमारी से हमें शिफा नहीं देता, या फिर वो मौजज़ा जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए नहीं करता।
लेकिन साथियों, खुदा के अपने मंसूबे हैं और वो मंसूबे बहुत आला हैं, और हमारी कमजोरियों के बावजूद वो हमारे साथ साथ है, हमें थामता है, हमारे दुख दर्द बांटता है। शायद वो हमें भी इसी किस्म के रबर बैंड्स दे, उसकी जानिब से वो थोड़ी तस्कीन भी हमारे लिए बहुत मानी रखती है, क्योंकि सबसे जरूरी सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि वो हमारे साथ हमारे घर पे है, यानी वो यकीनन हमसे प्यार करता है।
साथियों, प्यार की कदर पे गुफ्तगू करते हुए यकीनन आपको उस शख्स का तजुर्बा पसंद आया होगा, यानी प्यार के छोटे छोटे अमाल बहुत सारे दुख और तकलीफ, हत्ता के गुर्बत भी भुला देते हैं। जैसे उस लड़के को अपनी पुरानी जुराबों की हालत पे अफसोस ना था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका वालिद उसे बहुत प्यार करता है। उसके मुताबिक प्यार की अलामत सिर्फ नई जुराबें नहीं थीं, बल्कि बाप की कुर्बत उससे भी बढ़ के थी। अगर हम अपने बारे में सोचें तो शायद हम भी यही सोचते हैं कि प्यार सिर्फ بڑی بڑی چیزوں، قربانیوں یا تحائفی سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا شخص شاید اور بہت سے طریقوں سے ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے۔
سر، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اکثر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیار کی چھوٹی چھوٹی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان پوشیدہ قربانیوں کو بھول جاتے ہیں جو دوسرا شخص ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہم ظاہری قربانیوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ ہم برملا دوسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔
ساتھیو، اگر خاندان کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے لیے اس باپ کی ایک عمدہ مثال ہے جو اپنے گھر کے لیے وقت دیتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت کرتا، اٹھتا بیٹھتا اور اس کے مشکلوں میں بھی اس کو ساتھ دیتا ہے۔ آج ہمارے خاندانوں میں اس بات کی کمی ہے، لوگ گھر کے لیے بہت کم وقت دیتے ہیں۔ اسے ہم کام کی زیادتی نہیں کہہ سکیں گے بلکہ خاندانی امور سے غفلت، بچوں سے بے پرواہی۔ ایسے لوگوں کے پاس اگرچہ وقت بھی ہو، پھر بھی وہ یہ وقت گھر سے باہر گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنے بچوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا بھی پیار کا اظہار ہے، اس لیے تو بہت سے بچے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔
تو آئیے ساتھیو، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، پیار کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیار سے سب کچھ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ پیار میں برداشت، صبر و تحمل، معافی، سب کچھ پنہا ہے۔
اور ساتھیو، ان اقدار پہ عمل کرنے سے یقیناً ہمیں باطنی خوشی اور سکون بھی حاصل ہوگا۔ ساتھیو، ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگیاں پیار کی جیتی جاگتی مثال ہوں اور ہم ہمیشہ پیار کی بتیاں روشن رکھیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام روشن راہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ سارا جان اور فرانسس زیویر کو اجازت دیجیے۔
کروں